नमस्कार साथियों, 11वीं के लिए हिंदी में आज का पाठ है घर की याद। घर की याद कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। सबसे पहले कवि परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वे दूसरा सप्तक के प्रथम कवि हैं। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई कहकर संबोधित किया करते थे। उन्होंने स्वयं को कभी भी निराशा के गर्त में डूबने नहीं दिया। जैसे 7-7 बार मौत से वे लड़े, वैसे ही आज़ादी के पहले गुलामी से लड़े और आज़ादी के बाद तानाशाही से भी लड़े। आपातकाल के दौरान नियम पूर्वक सुबह, दोपहर, शाम तीनों बेलाओं में उन्होंने कविताएं लिखी थी, जो बाद में त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित भी हुई। भवानी भाई को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान दिया गया तथा 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिगरिया, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्रमशः सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1934-35 में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य शुरू किया और उस स्कूल को चलाते हुए 1942 में गिरफ्तार होकर 1945 में छूटे। उसी वर्ष महिलाश्रम वर्धा में शिक्षा देने एक शिक्षक की तरह गए और 4-5 साल वहीं बिताए। कविताएं लिखना लगभग 1930 से ही नियमित रूप से प्रारंभ हो गया था और कुछ कविताएं पंडित ईश्वरी प्रसाद वर्मा के संपादन में निकलने वाले हिंदू पंच में हाई स्कूल पास होने के पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। सन 1932-33 में वे माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी आग्रहपूर्वक कर्मवीर में उनकी कविताएं प्रकाशित करते रहे। हंस में भी उनकी कविताएं काफ़ी छपी। उसके बाद अज्ञेय जी ने दूसरा सप्तक में उन्हें प्रकाशित किया। दूसरा सप्तक के बाद प्रकाशन क्रम ज़्यादा नियमित होता गया। उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लिखे और मद्रास के ABM में संवाद निर्देशन भी किया। मद्रास से वे मुंबई में आकाशवाणी के प्रोड्यूसर होकर गए। बाद में उन्होंने आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। जीवन के 33वें वर्ष से ही वे खादी पहनने लगे। जीवन की सांध्य बेला में वे दिल्ली से नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं अचानक बीमार हो गए और अपने सगी संबंधियों व परिवारजनों के बीच अंतिम सांस ली। किसी को मरते समय भी कष्ट नहीं पहुंचाया। उनके पुत्र अनुपम मिश्र एक सुपरिचित पर्यावरणविद थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुरा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। भवानी प्रसाद मिश्र उन गिने चुने कवियों में थे जो कविता को ही अपना धर्म मानते थे और आम जनों की बात उनकी भाषा में ही रखते थे। उन्होंने ताल ठोककर कवियों को नसीहत दी थी, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उनकी बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए महसूस होता है कि कवि आपसे बोल रहा है, बतिया रहा है। जहां अपनी गीत फड़ोस कविता में कवि ने अपनी फिल्मी दुनिया में बिताए समय को याद रखा है, और कवि के गीतों का विक्रेता बन जाने की विडंबना को मार्मिकता के साथ कविता में ढाला है, वहीं सतपुरा के जंगल जैसी कविता सुधी पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया में लेकर चलती है। उनकी कविताएं गेय है, पाठकों को ताउम्र स्मरण रहती है। वे गूढ़ बातों को भी बहुत ही आसानी और सरलता के साथ अपनी कविताओं में रखते थे। नई कविताओं में उनका काफ़ी योगदान है। उनका सादगी भरा शिल्प अब भी नए कवियों के लिए चुनौती और प्रेरणा स्रोत है। वे जनता की बात को जन भाषा में ही रखते थे। उनकी कविताओं में नए भारत का स्वप्न झलकता है। उनकी कविताएं परिवर्तन और सुधार की अभिव्यक्ति है। वे आपातकाल में विरोध में खड़े हो गए और विरोध स्वरूप प्रतिदिन 3 कविताएं लिखते थे। वस्तुतः वे कवियों के कवि थे। अब आते हैं पाठ के सारांश पर। घर की याद, यह कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कारागार में थे। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आई। कवि कारावास में बंद है, बाहर बरसात हो रही है, इस कारण उसके प्राण और मन घर की यादों से घिर गए हैं। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं, सब में बहुत गहरा प्यार है। कवि की माँ अनपढ़ है, किंतु वह ममता की मूर्ति है। उसकी स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक भी फैला हुआ है। कवि के पिता चिर युवा हैं, वे अभी भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं। वे अत्यंत साहसी हैं, उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है, कामों में तूफान सी तेजी है। कवि मन ही मन कल्पना करता है कि आज जब उसके पिता नित्य की तरह व्यायाम करके आए होंगे तो उनकी आँखों में भवानी की याद में आंसू आ गए होंगे। वे अपने 5वें पुत्र की याद करके रो पड़े होंगे। उनके पिता भवानी को सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। आज जबकि भवानी जेल में है तो उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत हुए होंगे। कवि कल्पना करता है कि भवानी की माँ ने उनके पिता को ढांढस बंधाया होगा, कहा होगा कि वह पिता की इच्छा जानकर ही कारावास में गया है। यदि वह देशभक्ति के इस महान कार्य से पांव पीछे खींच लेता तो वह उसकी कोख लजाता, तब पिता ने अपने आंसू रोक लिए होंगे। कवि सजीले सावन को अपना संदेश वाहक बनाता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले किंतु उसके पिता के मर्म को दुखी ना करे। वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जेल में मस्त है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं। वह डटकर भोजन करता है, खेलता है, कूदता है और मस्त रहता है। कवि उसे सावधान करता है कि कहीं वह गलती से उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन ना कर दे, कहीं वह यह ना कह दे कि जेल में भवानी बहुत उदास, मौन और बेचैन है। अब कुछ विशेष जानकारियाँ। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण और अनुभूतिपूर्ण है। वे कविता करने या गाने की बजाय कविता कहते हैं। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। पानी गिर रहा है, वाक्य की आवृत्ति से वर्षा की झरी का बिंब साकार हो उठा है। घर नज़र में तिर रहा है, मैं चाक्षुष बिंब है। कवि का परिवार संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण है, जिसमें सभी सदस्य आपसी प्रेम और भाईचारे के कारण परस्पर जुड़े हुए हैं। भाई के लिए भुजा की उपमा और बहन के लिए प्यार की उपमा बहुत मनोरम बन पड़ी है। कवि के अभाव में बहन को अपने पिता का घर भी परिताप का घर लगा होगा, यह कथन अत्यंत प्रभावी और सुंदर है। प्रश्न शैली का मनोरम प्रयोग हुआ है, भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास का संगम है। कवि के मातृ प्रेम का तथा कवि की माता के ममता भरे वात्सल्य का अत्यंत सजीव, प्रभावी और अनुभूतिपूर्ण वर्णन हुआ है। कवि ने निरक्षरता की समस्या को भी उभारा है, माँ की गोद में सिर रखने का बिंब साकार हो गया है, चाक्षुष बिंब है यहाँ। कवि के पिता की जिंदा दिली विशेष रूप से प्रभावशाली शब्दों में अंकित हुई है। उनका दौड़ना, खिलखिलाना, मौत और शेर के सामने भी ना घबराना, बादलों के समान गंभीर वाणी होना उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के परिचायक है। यहाँ वीर रस की मनोरम अभिव्यक्ति हुई है। बुढ़ापे के ना व्यापने में विशेषोक्ति अलंकार है, बुढ़ापा होते हुए भी बुढ़ापा नहीं आया, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति है। अभी भी की आवृत्ति में जहाँ अनुप्रास और स्वर मैत्री है, वहाँ बुढ़ापा के ना होने की सूचना भी है। बोल में बादल गरजता तथा काम में झंझा लड़जता में उपमा अलंकार है। कवि के पिता शरीर से बलिष्ठ, कसरती, मन से भावुक तथा संस्कारों से गीता पाठी रहे हैं, इससे मिश्र जी की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान होता है। नज़र में तिरना एक दृश्य बिंब है, व्यायाम करने तथा गीता पाठ करने का बिंब भी साकार हो उठा है। कवि जेल में बंद होने के कारण तथा परिवार से दूर रहने के कारण स्वयं को अभागा कहता है, यह शब्द उसके परिवार प्रेम का परिचायक है। सोने पर सुहागा मुहावरे का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। माँ का यह कल्पित संवाद अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है, उसका वीर, तेजस्वी तथा साहसिक रूप प्रकट हुआ है। उसे भवानी के देश हित में जेल जाने पर गर्व है। पांव पीछे हटाना, कोख को लजाना मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। कवि ने सावन को दूत बनाने की पुरानी काव्य परंपरा का निर्वाह किया है, इससे कविता में मार्मिकता आ गई है। संबोधन शैली के कारण भी काव्य में सजीवता आ गई है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार हैं, छोटे छोटे चुस्त वाक्य और तुक के आश्रय से कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। बस के दो अर्थ हैं, केवल तथा नियंत्रण, अतः यहाँ यमक अलंकार हैं। कवि अपने पिता के प्रति अत्यंत भावुक है, वह अपने कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहता। कवि की पितृभक्ति अनुकरणीय है। आदमी से भागता हूँ मैं, कवि की मानसिक पीड़ा का मार्मिक वर्णन है। बक और शक शब्दों का प्रयोग यहाँ द्रष्टव्य है। पांचवें शब्द के प्रयोग में कितनी करुणा है, यह देखने योग्य है। सावन के लिए सजीला, हरा, पुण्य, पावन आदि विशेषण अवसर के अनुकूल तथा अत्यंत सार्थक हैं। कवि नहीं चाहता कि उसके माता पिता तथा अन्य परिवारजन उसके वियोग में दुखी हो, इसलिए वह उन्हें झूठी सांत्वना देना चाहता है। वह जेल की मस्ती और खुशी का भ्रम पैदा करके उनकी पीड़ा को हरना चाहता है। कवि वियोग की पीड़ा से व्यथित है। जेल में रहते हुए वह बहुत उदास, उद्विग्न और मौन है। वह एकांत प्रिय होकर घर की यादों में खोया रहने वाला दीवाना बन चुका है। भवानी अपने माता पिता का पांचवा पुत्र है, वह चाहता है उसके माता पिता उसके वियोग में पीड़ित ना हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।